ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंध अध्याय 14 श्लोक संख्या 34 और इस अध्याय का नाम है आदर्श पारिवारिक जीवन। पातम त्वत्तन रुक्तम हुए कभी भी पात्र भित्तमय हरिरे कविश चराचरम पात्रम। सही व्यक्ति जिसे दान दिया जा सके तो, लेकिन अत्र इस संसार में निरुक्तम निश्चित वे निसंदेह कभी भी विद्वानों द्वारा पात्र वित्तमय दान के श्वेत पात्र को खोज निकालने में दक्ष हरि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं निसंदेह एक एकमात्र पूर्वी ईशा हे पृथ्वी के राजा यतमयम जिस पर हर वस्तु टिकी है वही जिससे हर वस्तु उत्पन्न है चराचरम इस ब्रह्मांड के जड़या चेतन प्राणी। अनुवाद उत्तर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हे पृथ्वीपति पटु तथा विद्वान अध्येताओं ने यह तय किया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं जिन्हें प्रत्येक वस्तु अर्पित की जानी चाहिए जिन पर ब्रह्मांड के सारे जड़ या चेतन टिके हैं और सारी वस्तुएं उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। मेरे पीछे दराइए हे पृथ्वीपति पटु तथा विद्वान अध्येताओं ने यह तय किया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं जिन्हें प्रत्येक वस्तु अर्पित की जानी चाहिए जिन पर ब्रह्मांड के सारे जड़ या चेतन टिके हैं और सारी वस्तुएं उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। जब भी हम धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष विषय कोई धार्मिक कृत्य करें तो देश काल तथा पात्र के अनुसार करें। नारद मुनि पहले ही देश तथा काल को वर्णन कर चुके हैं। काल को वर्णन अपने विश्व कुरियात प्रतिपाते दिन छह से प्रारंभ होने वाले श्लोक 20 से 24वें श्लोक तक हुआ है। दान देने या श्राद्ध करने की वर्णन सनासी पुष्कर आदि क्षेत्र से हस्त्र से प्रारंभ होता है जो श्लोक 30 से 35 तक चलता है। अभिशिष्ट श्लोक में इसका वर्णन है कि किसे सब कुछ अर्पित किया जाए हरि वैक उर्वीस एवं चराचरण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सहक मूल है अतः सर्वोत्तम पात्र है जिन्हें सब कुछ दिया जाना चाहिए। भगवता में भगवान कहा गया है कि भोक्तार तपसान सर्वलोक महेश्वर श्वेतम सर्वभूता नाम ज्ञाता माम शांति मगच्छति। यदि कोई वास्तविक शांति तथा समृद्धि को भोगना चाहता है तो उसे कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए क्योंकि वे असली भोक्ता नित्य तथा स्वामी है। इसलिए कहा गया है भागवतम में कि यथा तरो मुनिषे चैने तृतंत तस्कंद भुजो शाखान पारो पहाड़ आश्चर्य त्रियाणा तथा सर्वाहीन अच्युत भगवान अच्युत या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा द्वारा या उन्हें प्रसन्न करके मनुष्य सबों को प्रसन्न कर सकता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींच कर शाखाओं पत्तियों तथा फूलों को पानी दिया जा सकता है या उदर को भोजन प्रदान करके शरीर की सारी इंद्रियों को तुष्ट किया जा सकता है, इसीलिए भक्त अपने प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देता है, जिससे उसे धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का सर्वोत्तम फल मिले। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय जयस्वरूपम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस अध्याय का नाम ही है आदर्श पारिवारिक जीवन। नारद जी इस श्लोक के माध्यम से युधिष्ठिर महाराज को बताते हुए हम सबको शिक्षा देते हैं कि यदि हम प्रसन्न होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सच्चाई यह है कि दुनिया का जो हर व्यक्ति है, हर इंसान प्रसन्न रहना चाहता है। जैसे यहां पर जितने लोग बैठे हैं सब प्रसन्न रहना चाहते ही नहीं चाहते हैं, सब प्रसन्न रहना चाहते हैं, सब सुखी में रहना चाहते हैं, कोई कष्ट नहीं चाहता है, दुख नहीं चाहता है। और चाहता क्या है कि उसकी हर इच्छाएं क्या होने लगे, इससे पता चलता है कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन हो कुछ नहीं पाता, राइट। हम प्रसन्न रहना चाहते हैं हर पल, लेकिन रह नहीं पाते। हम हर पल सुखी रहना चाहते हैं तो नहीं हो पाता। हम किसी प्रकार का कष्ट नहीं चाहते वो भी नहीं हो पाता। कभी हमने विचार ही नहीं किया ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा कि हम जो चाहते हैं वो नहीं पा रहे, ऐसा क्यों? क्योंकि इस विचार करने के हमारे पास समय नहीं इन सब चीज के लिए। अब कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि जिसके से सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, हमें प्रसन्नता मिलने लगे, सुख मिलने लगे, है ना, तो एक तभी रास्ता मिलेगा इस श्लोक के माध्यम से कि यदि आप धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी चाहते हैं सब मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। किसके प्रति समर्पण करना पड़ेगा, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया हुआ है, जिसके ऊपर एक पूरा पृथ्वी टिकी हुई है, जो कुछ सब कुछ दे रहा है ना, सब कुछ का जो स्रोत है। जब तक हम उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें सुख नहीं। हम अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे, अर्थात कृष्ण जो है, ब्रह्मा जी प्रथम जीव है ना, सब जानते हैं ब्रह्मा जी प्रथम जीव है। ब्रह्मा जी हम सब तो बाद में आए, लेकिन ब्रह्मा जी प्रथम जीव है। वो जानता क्या करता है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विद्या अनादि आदि को बिंदम सर्वकारण का, जो कृष्ण है सब कारणों के परम कारण है। जब तक हम उन्हें समर्पित नहीं करेंगे, अपने आप को उनसे लिंक नहीं करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, जुड़ेंगे नहीं या जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम कृष्ण की जो कृपा है, कि भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, आनंद के आधार हैं। जो छह प्रकार के ऑपुलेंसेस हैं वो सब किसे पाए जाते हैं, कृष्ण में पाए जाते हैं। तो जो आनंद के आधार हैं, अगर हम उसे आनंद लेना चाहते हैं तो तभी मिलेगा जब हम अपने आप को उनसे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, राइट। जैसे बिजली चल रही है, पंखा चल रहा है, इसलिए कि बिजली से कनेक्टेड है। अब पंखा इसलिए चल रहा है कि आपके बटन जो है स्विच ऑन है, राइट। अगर स्विच ऑफ कर देंगे तो पंखा नहीं चलेगा। लेकिन ये भी जानना चाहिए, ये भी जानना चाहिए कि जो हमारा स्विच है वो तारा पीछे गया हुआ है नहीं, तो कहां से गया हुआ है, जहां से मेन सोर्स है बिजली का बॉक्स है ना, ट्रांसफार्मर से होता है वहां से। लेकिन ट्रांसफार्मर से तारा है वो किससे आया हुआ है, पीछे से आया हुआ है, जहां से बिजली जनरेट होती है, जो बनाता है। अब बिजली कैसे बनती है, जल से, राइट। जब उसके ऊपर जल गिराया जाता है तो रन करता है, बिजली जनरेट होती है। और जल कहां से आता है, भगवान से आता है। जब हम पंखे चिवा ले रहे हैं, इसका किसी किसके हाथ है, इसके बारे में हमने कोई सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारी अज्ञानता है। हम तो बस सोचते हैं कि स्विच ऑन कर दिया यही तो बिजली आती है। सोचिए इस बात, शास्त्र ऐसे ही नहीं कहता कि हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी है, उसके पीछे किसका हाथ है, भगवान का हाथ। इसको ध्यान रखिए दिमाग, कि अगर हम हवा ले रहे हैं तो हवा देने वाला कौन है, भगवान है। पंखा हवा नहीं बनाता है, ये जो पंखा है हवा थोड़ी बनाता है। हवा कौन बनाते हैं, कृष्ण बनाते हैं। जो हवा यहां मौजूद है उस हवा को इकट्ठा करके हमारे ऊपर फेंकना एक पंखा का काम है। इसे जो पंखा है ऐसा डिजाइन किया गया है, राइट। ये पंखे दो प्रकार डिजाइन किए जाते हैं। एक डिजाइन ऐसा क्या है कि वो जो पंखा की हवा, जो हवा है ना, वो नीचे फेंकता है। एक पंखे पे जब डिजाइन कर दिया जाता है, शेप चेंज कर दिया जाता है, तो अंदर की हवा को क्या करता है, वो बाहर फेंकता है। उसको क्या कहते हैं, पंखा वही है। तो एक पंखा हवा नहीं बनाता, हवा कौन बनाते हैं, कृष्ण बनाते हैं, भगवान बनाते हैं। अब बताइए उनका नाम लेना ठीक नहीं मिला, यही समस्या है। पूरे संसार के लोग दुखी क्यों है, दुख का कारण यही है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं, चाहे हम पैदल चलें, चाहे साइकिल चलें, चाहे गाड़ी चलें, चाहे घोड़ा पर बैठ कर चलें, चलते हैं, ये जमीन नहीं होती तो हम किस पर चलते। आप खुद सोचिए, कभी सोचा इसके बारे में कि जिस पृथ्वी पे हम चल रहे हैं वो किसने बनाया हुआ है, किस पे टिकी हुई है, कभी इसके बारे में सोचा, सोचा नहीं है, सोचने का फुर्सत नहीं है। वही चीज में बताया गया है कि ये पृथ्वी जिस पर टिकी हुई है वो भी किस पर, क्योंकि है ईश्वर भगवान, अनंत शेष टिकी हुई। इसलिए जब कोई मंदिर का निर्माण होता है, घर बनाया जाता है, तो उसका जो बेस होता है उसको क्या बोलते हैं? नीव। ये किसकी स्थापना की जाती है? भगवान अनंत शेष की। ऐसा है, अब हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ध्यान रख रहे हैं कि आश्रम में पृथ्वी बनाया किसने, उसके बारे में तो हमको क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। तो भक्त और भगवान में यही अंतर होता है। भक्त उन भगवान के बारे में सोचता है, अभक्त उन भगवान के बारे में नहीं सोचता है। इस समस्या अभी कुछ मैंने पिछले महीने शायद एक योगा अभियान शुरू किया गया था, मालूम है आपको 21 जून को क्या डिक्लेयर कर दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो 20 तारीख को एक योगा अभियान किया गया था लाल किला पर। कहाँ? लाल किला। करीब 25,000 से ज्यादा लोग आए हुए थे। संयोग था कि इस्कॉन तरफ से मुझे भी इन्वाइट किया गया था, मैं था। काफी योगा पे बात करने वाले हर संस्थाओं के जो लीडर्स थे वहां पर मौजूद थे। सबको दो दो मिनट योगा पर क्या था? बोलना था। मैंने सबका सुना। जब मेरा नंबर आया तो मैंने क्या बोला आप सुनिए। हमने बोला कि हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, सब के बीच में पूरा लाइव जा रहा था, कि हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जहां योग की चर्चा हो और कृष्ण का नाम न लिया जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बात हमें बोली, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बात बोल रहा है कि योग की चर्चा हो और कृष्ण का नाम न लिया जाए, कैसे हो सकता है? क्योंकि सारे योगियों के ईश्वर और योग के स्वामी कौन है? श्री कृष्ण है। जब त्रयोगेश्वर कृष्ण, क्यों? कि मुर्दा व्यक्ति योग नहीं कर सकता। मुर्दा व्यक्ति योग कर सकता है पार्क में जाकर के? मैंने समझाया, मैं समझाऊंगा कि मुर्दा व्यक्ति योग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब शरीर में आत्मा ही नहीं रहेगी तब योग क्या करेंगे? सच है कि नहीं सच है? यही सच है। और दूसरा, आत्मा है और शरीर नहीं है तब भी आप योग नहीं कर सकते, कि जब शरीर नहीं है तो टांग कहां उठाएंगे? कि हम तो आत्मा है ना, आत्मा दिखाई नहीं देती, तो योग कब कर सकते हैं? जब आत्मा भी हो और शरीर भी हो। जब आत्मा और शरीर का योग होता है वही क्या है, तभी आप योग कर सकते हैं। अभी योग नहीं हुआ कि जब योग आत्मा और शरीर का योग होता है तो हमारा क्या होता है? जीवन होता है। हमारा जीवन तभी है जब आत्मा और शरीर दोनों एक साथ, तभी तो जीवन है। और दोनों में से एक नहीं है तो जीवन कैसा जीवन है? आपको सचिव लगता और उसको योग तब कहलाता है जब आत्मा और शरीर दोनों परमात्मा से जुड़ने की जो विधि है उसे योग कहते हैं। एक प्रभुपाद जी का योग की परिभाषा है। आप भगवद गीता के 6वें अध्याय के 3रे श्लोक में आप इसको पढ़िए, प्रभुपाद बड़ा क्लियर है, एक लाइन में में योग की परिभाषा होता है कि परमात्मा अर्थात कृष्ण से योग करने की विधि ही योग है। जो भक्त होता है प्रभु योग कर रहा है, जिसे कहते हैं क्या, भक्ति योग। गीता में चार योग के बारे में भगवान बताए, कर्म योग, ध्यान योग, पुरुषोत्तम योग और भक्ति योग। जैसे भक्ति योग क्या है, श्रेष्ठ। कैसे पूरे दुनिया में इस कान के सेंटर के द्वारा प्रतिदिन 4:30 बजे से लेकर के भागवत कक्षा तक एक क्या है, योग है, जिसे हम क्या कहते हैं, भक्ति योग। और योग के कई प्रकार हैं, जैसे हमारे भक्त आते हैं भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करना भी क्या है, योग है। फिर हम भगवान का दर्शन करते हैं, दर्शन योग, अपने आप को भगवान के नेत्रों द्वारा कनेक्ट करते हैं, दर्शन योग, दर्शन करते हैं। और दर्शन के साथ साथ हम नाचते भी हो गाते भी हैं। डांसिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, सबसे बड़ा योगा माना गया ये भी होगा, डांसिंग। अगर आप नृत्य करते हैं तो जाओ योग करना। आप देखिए, एक तो होगा भक्ति योग, भक्ति योग में कई प्रकार के हुए, प्रणाम हम कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, है ना। फिर बैठ करके जपा योग, क्या करते हैं, जपा योग करते हैं। उसके बाद श्रवण करते हैं, कथा का सुनना और सुनाना, ये भी योग है। क्योंकि प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, माने योग की परिभाषा कहता है कि परमात्मा से युक्त होने की विधि ही क्या है, योग है। अगर हम परमात्मा का दर्शन करते हैं तो योग कर रहे हैं, दर्शन के द्वारा। भगवान का कीर्तन के द्वारा योग कर रहे हैं, क्योंकि जुड़ना चाहते हैं। ये एक परिभाषा है प्रभुपाद, इसको बहुत ध्यान से समझना है, है ना। कक्षा जब भागवत कथा हम सुनते हैं तो योग कर रहे हैं, क्योंकि वाणी के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा हम आपको अपने आप को किससे जोड़ रहे हैं, कृष्ण जोड़ रहे हैं, यही भक्ति योग है। ये हम प्रतिदिन कर रहे हैं। तो हमारा जो भक्त है वो सुबह 4:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक क्या करता है, भक्ति योग करता है। उसको अलग से जाकर के पार्क में टांग उठाने की जरूरत नहीं है, खखाड़ने की जरूरत नहीं है, साइकिल चलाने की जरूरत नहीं है। योगा अगर वो ध्यान से करे, कहते ना स्विमिंग बेसिस है, क्योंकि हम डांस नहीं कर रहे हैं। आप डांस करिए, देखिए सारी ग्रंथियां अपने आप को हो जाएंगी, खुल जाएंगी। हम डांस करना बंद कर दिए इसलिए हमारे शरीर क्या हो गई, जकड़ गई है, ये हमारी समस्या है। स्विमिंग ये क्या है, भक्ति योग। तो कहने का मतलब है कि ये भक्ति योग के साथ हम क्या जानते, क्या करते हैं, अपना खुराक लेते हैं। आत्मा का खुराक क्या है, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का नाम, परमात्मा कीर्तन। ये किसका खुराक है, आत्मा का। तो भक्त प्रतिदिन करके पहले अपना भोजन लेता है। तो 4:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो कार्यक्रम है वो तो किसके लिए है, अपने लिए, आत्मा के लिए है। और 9 बजे से लेकर के 10 बजे का जो प्रोग्राम होता है प्रसाद, वो तो किसके लिए है, शरीर के लिए। यही अंतर, क्योंकि पहले हम अपना खुराक लेते हैं फिर शरीर को खुराक देते हैं। कि ये जो भोजन करते हैं वो तो किसका खुराक है, शरीर का। तो हम शरीर का भी क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं। और ठीक 9 बजे हम क्या लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, लेते नहीं लेते हैं। वो किसके लिए, शरीर के लिए। तो पहले हम आत्मा का योग करते हैं फिर शरीर का योग हो जाता है, क्योंकि उसको भी क्या चाहिए, अपना खुराक चाहिए। और फिर हम जो है सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं 10 बजे से। तो जब तक हम भक्ति योग नहीं करेंगे, जब तक अपना खुराक नहीं लेंगे, शरीर को नहीं देंगे, तो सेवा करने मन नहीं लगेगा। प्रभुपाद जी की विधि कितनी सेंसिटिव है, इसे आप पता। यह भक्तों का योग, भक्ति योग। भक्त इस तरह से अपनी दिनचर्या शुरू करता है। इसीलिए कृष्णदास बिंदास कहते ना, माया दास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास। जो माया के पास होते हैं अब उनकी दिनचर्या और सुबह उठते ही व्यक्ति मांगेंगे बिस्तर वाली चाय चाहिए, उठते ही उनको क्या चाहिए, चाय चाहिए पीने के लिए, फिर पढ़ने के लिए अखबार चाहिए है ना, फिर कुत्ता लेकर के टहलने जाएंगे। ये अभक्त की दिनचर्या होती है। जो भक्त नहीं होता है उसकी दिनचर्या क्या है, अभक्त ऐसी तरह सोचता है। दिनचर्या नहीं अंतर है। हम उठते हैं किसके लिए, कृष्ण के लिए, और किसके लिए उठते हैं, अपने लिए, भगवान के लिए उठते ही नहीं। तो कौन प्रसन्न रहेगा, कौन उदास रहेगा, इससे पता चलता है। इसलिए भक्त हमेशा प्रसन्न रहता है, माया अर्थात सदा उदास। यही अंतर है, इस अंतर को बदलना हो। तो प्रभुपाद जी चाहते थे, चित चेते यहां पर लिखे कि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि हरे कृष्ण आंदोलन अर्थात विग्रह की स्थापना करके विश्व के प्रत्येक गांव और नगर में फैल जाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इस आंदोलन का लाभ उठाए। घर घर में गौ मिताय होने चाहिए, घर घर में लोग सुबह उठना चाहिए और भक्ति योगा करना चाहिए, तब आप प्रसन्न रहेंगे। इस प्रभुपाद जी का इच्छा है चेतन महाप्रभु कि यदि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं। प्रभुपाद बोला करते थे, यू वॉन्ट टू बी हैप्पी देन चांद हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। यदि आप प्रसन्न रहना चाहेंगे तो एक ही सूत्र है, वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी आज कृष्णो यही समझाते हैं कि अगर आप जड़ में पानी डालेंगे तो आपको एक एक फूल, एक एक पत्ते, एक एक शाखाओं की सींचने की जरूरत नहीं, क्योंकि जड़ पर सब कुछ टिका हुआ है। उसी प्रकार से जब पूरे संसार का जड़ कौन है, कृष्ण है, तो हम कृष्ण ही को क्यों न प्रसन्न करें। ये प्रपत होना चाहिए कि यदि हम कृष्ण को प्रसन्न कर लिया तो फिर हमें किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी बाबा के पास जाना नहीं है, जो कहे गोलगप्पा खा लो कृपा मिल जाएगी। हमें कहीं नहीं जाना है, किसी के पास दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। हमको किसको प्रसन्न करना है, कृष्ण, बस यही निचोड़ है इस श्लोक का कि हमें सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करना है, क्योंकि यह एकमात्र कृष्ण है जो डंके की चोट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और सर्वधर्मान प्रतिज्ञा मां में कम समझ, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ बस, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। भगवान क्या कहते हैं कि मन मना भो मत भक्तो मध्याजी मां नमस्कार, अपना मन मेरे में लगाओ, फिर तुम्हारा मन और कहीं लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ये भी कहते हैं कि अनंत चिंतन तो मां एक जो मेरा परिपास थे, यदि तुम अनंत भाव की मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। हमारी क्या स्थिति है, भगवान पर विश्वास हूं, सारी कमी हमारे अंदर है। भगवान तो कह रहे हैं, भगवान तो दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं, लेकिन हम उसके पात्र नहीं है। इसलिए बताया पात्रम शरीर व्यक्ति से दान दिया जा सके, पात्र होना अच्छा होना चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। भगवान की जो कृपा है वो दे रही है, लेकिन वो प्राप्त हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम क्या है, पात्र नहीं, उपात्र, सुपात्र बनना पड़ेगा। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, उसकी तरंगे और तस्वीरें तैर रही हैं हवा में। अब आपका रेडियो और टेलीविजन का स्विच ऑफ है या दोनों खराब है, तो उसमें तरंगों का कोई दोस्त थोड़ी है, तरंगे तो वही नहीं। तो रिसीवर ऑन होना चाहिए, रिसीवर जो खराब है ना, तो हम क्या कर सकते, भगवान को क्या कर सकते। तो भगवान की कृपा तैर रही है, लेकिन हम रिसीवर हैं, हम ही खराब, हम ले नहीं पा रहे। वी आर द रिसीवर, जो रिसीवर है उसका स्विच ऑफ है, और लेना नहीं चाहता। अजीले में अपने आप को ऑन करने और रिसीव करने के लिए उपाय रहे हैं, जिससे भक्त उस वक्त ही कृपा पाने के लिए दौड़ता है भगवान के, है ना। तो वो प्रसन्न नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। अभक्त उपाय क्यों दौड़ता है, कुत्ता टंगा क्यों दौड़ता है, खाने के लिए दौड़ता है, चाय पीने के लिए दौड़ता है, तो कैसे प्रसन्न रहेगा। अब तो सोचो, अगर प्रसन्नता पैसे से टेक्नोलॉजी से मिल जाती तो आज इसका इतना बावमेंट फैल नहीं पाता। क्योंकि प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उन्होंने क्या देखा, यहां इतना टेक्नोलॉजी है, इतना पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग सुख के लिए और शांति के लिए क्या है, तरस रहे हैं, परेशान है। तब प्रभुपाद जी ने कैसे प्रसन्न किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बड़े बड़े अंग्रेज के लड़के यंग है ना, जो प्रसन्न रहने के सुख करने के लिए इंजेक्शन लेते थे, नशा लेते थे, सब छोड़ दिया, क्या करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। आनंद से लेने लगे। तो जो प्रसन्नता है, खुशी है, आनंद है, एक किससे आती है, भगवान से मिलती है, टेक्नोलॉजी से नहीं मिलती, पैसे से नहीं मिलता। अगर शांति और सुख और आनंद पैसे से मिलता तो जितने पैसे वाले लोग हैं आराम से शांति से रहते, ऐसा नहीं है। हमें नहीं सोचना चाहिए कि जब बड़ी गाड़ी से BMW से चल रहा है या जगुआर से चल रहा है वो बड़ा प्रसन्न है। वास्तव में ऐसा नहीं होता। जानते क्या हुआ, एक व्यक्ति से हम मिलने के लिए गए थे, GK2 घटना है W ब्लॉक में, जहां अरबपति लोग रहते हैं, तो उनसे मिलने के लिए हम गए। सत्य घटना होता है, पहले दिन गया गार्ड ने नहीं मिलने दिया, दूसरे दिन गया गार्ड ने नहीं मिलने दिया। अब बड़ी बड़ी गाड़ियां सब, सारी विदेशी गाड़ियां, अच्छी गाड़ियां सब खड़ी, बहुत बड़ा बंगला। तीसरे दिन में एक टेक्निक अपनाई, हम कहा हम क्या करेंगे, पहले गार्ड को ही प्रचार करेंगे। मैं जब तीसरी बार गया तब उसको मैंने एक बड़ा सा लड्डू प्रसाद निकाल करके गार्ड को खिलाया। लड्डू प्रसाद जो है असर कर गया। टेक्निक, जब उसको प्रसाद दिया तो टूट गया, क्रैक हो गया अपने आप। प्रसाद की कितनी ताकत होती है, आप खुद सोचिए। कि स्वामी जी आप दो दिन से आ रहे हैं, आज आप बैठिए, है ना, वो जो बाहर कुर्सी उसके लिए रखी रहती है ना, तो उसने कुर्सी भी दिया कि आप बैठे, मैं जो हूं उसको मैं आप कोशिश करता हूं कार मिलवा। तो मैंने क्या किया, एक कैलेंडर भी दिया उसको नए साल का, कैलेंडर का सिग्नल चल रहा था, तो और खुश हो गया। जानते हैं हमारे गुरु गोस्वामी बताते हैं कि संबंध बनाने से इससे बेहतर तरीका कुछ है ही नहीं पूरी दुनिया में। अगर आप किसी से प्रेम संबंध या संबंध बनाना चाहते हैं तो रूप गोस्वामी का एक फर्मूला है, ददाति प्रज्ञाति, आप खिलाओ भी और खाओ भी, उपहार दो भी और उपहार लो भी। जहां उपहार का देना, उपहार का लेना, खाना और खिलाना, दिल की बात कहना, दिल की बात सुनना, एक छह चीजें की जाती है, संबंध वहीं पे बनता है और बना रहता है। एक वैदिक सिस्टम है। अब इसी चीज आप अपने बिजनेस में कहीं भी आप इसको अप्लाई करेंगे ये लगेगा, लेकिन ये जो संदेश है ये वेदों का, वेद ऐसा करता है, कि यदि आप संबंध बनाना चाहते हैं, किसी से काम निकालना चाहते हैं, तो उपहार देना चाहिए. तो उपहार का देना, उपहार का लेना, खाना और खिलाना, दिल की बात कहना, दिल की बात सुनना, इच्छा चीज जहां होती है वो गोस्वामी जी कहते हैं संबंध वही बनता है और बला होता है. मैंने यही फैलना लागू किया, काम बन गया. लड्डू मैंने पर उसको प्रसाद खिलाया, फिर उसको एक उपहार क्या दिया, भगवान राधा प्रसादी का कैलेंडर. संबंध उससे बन गया. क्यों, जो जब मीडिएटर होता है, अगर वो खुश रहे तो वही मिलाएगा मालिक से. इसलिए मिनिस्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी होते हैं, कि सेक्रेटरी ही चाहे तो मिलवाएगा, नहीं चाहे नहीं मिलवाएगा. तो दिस इज द टेक्निक. मैंने अप्लाई कर तीसरे दिन उसका रिजल्ट अच्छा रहा. वो गया कह कि स्वामी जी दो दिन से आ रहे हैं, आप उनसे जरूर मिलिए. ठीक है, कि उसने दम देकर बोला होगा. तो आज तो जो बड़े लोग होते हैं, जो पुराना फर्नीचर उनके घर का होता है ना, बांस उसके बेतुत का, उसको जानते क्या करते, जो बाहर लान होता है ना वहां रखे रहते हैं, एक टेबल और चार पांच फर्नीचर रखे. तो जिससे उनका संबंध ज्यादा नहीं होता, मौत नहीं देना चाहते, उसको वहीं से बात करके टरका देते हैं, है ना, ऐसा होता है. तो उसने क्या किया, हमारे साथ भी ऐसा करने का प्रयास किया, है ना. अब मैं इस टेक्निक जानता था कि ऐसा नहीं कि इसका फर्नीचर जो सोफा से अंदर है ना, ड्राइंग रूम में, ए हमें यहीं से भगाना चाहता है, तो हम कम नहीं थे. तो दाल दाल में पास पास तो हमें तड़काना चाहते हो, हमें तुम्हारे घर में घुसना चाहता हूं, ऐसा हो नहीं सकता. उससे फिर हमने ऐसी दो तीन बातें की जो बड़ा प्रभावित हो गया. कहे स्वामी जी आप अंदर आइए, अब हमको अंदर बुला रहा है ना. अब ले गया बड़ा ड्राइंग रूम है ना, सोफा सब पड़ा, अब वहां बैठाया. अब तुरंत नौकर को आदेश दिया कि स्वामी जी के बिस्तर खुला. पहले डरकाता था वही बाहर से ही, देखिए और टूट गया, उसको मैंने क्रैक कर लिया, है ना. जब उनका अब बताए शेख जी आपकी तकलीफ क्या है, क्योंकि उसको बातों से हम ये समझ गए कि ये आदमी बहुत तकलीफ में, उसकी बातों से हम क्यों. इसीलिए जो डॉक्टर होता है बड़ा एक्सपर्ट होता है, तो हम लोग स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं, आध्यात्मिक डॉक्टर हैं. आदमी का जो माया का रोग, उसको भक्त नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा. तो एक्सपर्ट ड्यूटी वही है जब भव रोग को, मायक रोग को अच्छी तरह से समझ लो, जैसा प्रभुपाद जी समझे. दिस इज द आर्ट ऑफ ड्यूटी, कि सामने वाला माया किस भोग किस से ग्रसित है, ये चीज बात समझ में आ गई. फिर जो है उसको हमने समझा, जानते हैं क्या होगा, तब वो अपनी रियल स्टोरी में आया. भावना रूप को स्वामी का खाना और खिलाना, उपहार देना, क्योंकि मैंने उसको प्रसाद दिया, कैलेंडर दिया, नए साल का सब दिया, एक और देने के बाद फिर बात हो. अब दिल की बात कहना, दिल की बात सुनना, अब अपना दिल खोल दिया. दिल तब खुला जब उपहार भी मिल गया, प्रसाद भी मिल गया, और समझ गया कि स्वामी जी अपने हैं, अपनापन है. फिर उसने अपने दिल की बात कहने से, जानते उसकी स्टोरी क्या थी, उसने कहा कि स्वामी जी भगवान ने हमको बहुत दिया है, आप स्वयं दो तीन दिन से आ रहे हैं, देख रहे हैं उनका, बिल्कुल देख रहा हूं. उसने जानता क्या कहते, ये जो मार्बल लगा हुआ है ना, इसके बीच का जो गैप है, लोग शीशा लगाते हैं, वो चांदी पिरोया है, जो चांदी भरवाया होगा, जो गैपिंग होती है ना, चांदी भरवाया होगा, इतना बड़ा. ऐसे ऐसे लोग हैं, अब सारी विदेशी का बड़ी बड़ी गाड़ियां है ना, लेकिन मुझे तकलीफ है कि हमें किसी चीज कोई कमी है. क्योंकि स्वामी जी मैं आज आपसे बता रहा हूं मुझे क्या तकलीफ है, उनका बताइए, जानते उसकी क्या तकलीफ है. वो बता रहा था कि स्वामी जी मेरे पास एक ही बेटा है, और ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ी फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियलिस्ट, इतना बड़ा हमारा कारोबार है, एक ही बेटा है. उसके पास दो समस्याएं थी, एक तो बेटे को कोई बेटा नहीं हो रहा है, और दूसरा अब बेटा जो हमारा है उसको ऐसा पारालिसिस मार दिया
कि अब बेटा पैदा भी नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति पैरालिसिस मार दिया, तो कहे कि अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा उसका क्या होगा, कोई बेटी भी नहीं है कि हम उसको दे सकते थे, कोई है ही नहीं। कैसे लगा हमने क्या सोचा कि देखो जब यही आदमी जब अपनी जगुआर गाड़ी से या BMW जब बाहर जाता होगा तो फुटपाथ रहने वाले, साइकिल चलने वाले, मारुति 800 चलने वाले, सेंट्रो चलने वाले क्या सोचते हैं, देखो कितना बड़ा आदमी जा रहा है, कितना प्रसन्न है, बड़ा खुश है, लेकिन वो जो पिंजरे में तोता बैठा हुआ है वो जानता है कि वो कितना खुश है, कितना खुश नहीं है। आप उन्हें दिखाई देगा, जैसे सोने के पिंजरे में तोते के बंद कर दो है ना, तो तोता उससे खुश नहीं रहता, पिंजरा चाहे सोने का चाहे लोहे का उसको क्या पता है ना। आप खुद सोचिए, तो ऐसे लोगों की हालत सोने के पिंजरे के तोते की तरह है, जो खुश रहने के लिए उड़ने के लिए तरसते रहते हैं। ये स्थिति है, ये चीज हमको पता नहीं चलती। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम सड़क पर चलें तो फुटपाथ पर सोने वालों को देख करके अपने घर को याद करें कि भगवान हमारे पर कितना कृपा किया है कि एक घर तो दिया हुआ है। किसी आप अपंग अपाहिज को देखिए तो अपने सुंदर शरीर को ध्यान करिए कि कोई भगवान हमको अपंग अपाहिज तो नहीं बना। हमें नीचे को ऐसे देखना चाहिए, आप दूसरों का मकान घर देखेंगे कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि जानते हैं हमारे इंडिया में एक ऐसे शेठ जी हैं जो 5,000 करोड़ के मकान में रहते हैं, हमने देखा है। कितने में मुकेश अंबानी का जो मकान है वो 5,000 करोड़ का बना हुआ है। चार लोग हैं, चार लोग के लिए 5,000 करोड़ का मकान, सोचने वाली बात है। कहां तक आप देखेंगे? तो इसीलिए हमें हमेशा नीचे की ओर देखना चाहिए। भगवान को क्या करना, तो कहे कि स्काई हैज नॉट लिमिट, आसमान पर ऊपर उठने की कोई सीमा नहीं होती राइट, लेकिन नीचे जाने की सीमा होती है राइट। तो हमें बहुत ही प्रसन्न कैसे रहना चाहिए, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। प्रसन्न रहना, मेंटेन करना भी एक क्या है, कला। ये तभी आप सीखेंगे जब भक्ति योग को अच्छी तरह समझेंगे, जब गीता को आप सुनेंगे। तोते की तरह श्लोक रखने से कुछ नहीं होता है। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें पूरा गीता के श्लोक याद है। ऐसे ऐसे लोग हैं, एक लड़का है जो बनारस से आया हुआ था, उसको टेलीविजन पर उसके पिता जी को मिलने के लिए आए थे, जानते हैं सास श्लोक उसके बेटे को सात श्लोक इस तरह से याद है कि आप क्लास वाइज सुनाइए, माने अध्याय एक से लेकर बिना पढ़े एक श्लोक बोलेगा, रिवर्स करके वही श्लोक बोलेगा। ऐसा दिमाग है किसी के पास, रिवर्स भी पीछे के श्लोक बोलना शुरू कर देगा। लेकिन तोते की तरह श्लोक याद करने से कुछ नहीं होता जब तक आप श्लोक के अर्थ को नहीं समझते और अपने जीवन में नहीं होता। ये समस्या ऐसे भी लोग हमने देखे हैं, बंबई में हमारे एक कांग्रेगेशन ड्यूटी लाइव मेंबर है, उनको भी सात से श्लोक याद है, मिस्टर रमन सेठ नाम बता दिया। आज उनको दीक्षा लाइव ले, क्योंकि पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो श्लोक याद करने से क्या फायदा, जब आप व्यसन छोड़ेंगे ही नहीं तो श्लोक याद करें। कहने का मतलब कि हम गीता को पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उतारें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उतारेंगे नहीं, पढ़ने का समझने का कोई फायदा नहीं। ये समस्या, गीता सब रखते हैं, किसी से पूछो गीता है, हाँ है, जैसे ही वैसे ही रखी हुई है। लोग जानते, कुछ लोग तो अपने पूजा घर में लाल कपड़े बांध करके रख देंगे है नहीं, उसके बाद फूल चढ़ाएंगे, पानी छिड़केंगे, अगरबत्ती भी दिखाएंगे, पढ़ेंगे। यह होता है, तो ग्रंथ पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है, और अपने जीवन में उतारने के लिए। सारी समस्या हमारे पूरे वर्ल्ड के इंसान के जो लोग हैं जो परेशान हैं, इसीलिए परेशान हैं कि उनको परेशानी दूर करने की कला आती ही नहीं, क्योंकि इस संसार में ठग गुरु की संख्या ज्यादा है, सही ज्ञान कोई देने वाला भी नहीं है, ये भी समस्या है। अब विचार किसके किसके पास जाए कि हर प्रकार के गुरु हैं इस संसार में। आप भी तुरंत अभी कोई लड़का यहां पर बैठ करके आप भी गुरु बन सकते हो। गुरु बनना और देवी देवता बनना बड़ा आसान हो गया आजकल। ऐसे ऐसे गुरु जिन्होंने अपने आप को कृष्ण का अवतार मान लिया है नहीं कि मैं कृष्ण हूं कृष्ण का अवतार हूं, राज रचाने लगे और आज जेल में चले गए। तथा कथित गुरु तथा कथित भगवान, गुरु कुछ नहीं है लेकिन हम कृष्ण हैं, कृष्ण के अवतार हैं, दाढ़ी पकी हुई है। अरे भगवान दाढ़ी थोड़ी होती है, मतलब पकती है, बीमार भी नहीं होते, बूढ़े भी होते, लेकिन नहीं हम भगवान हैं। अशिष्ट लोग उनको भगवान माने लगते हैं, जय गुरुदेव जय भगवान। आज समझे जब त्रेता युग में द्वापर युग में शतयुग में बड़े बड़े दुष्ट अपने आप को भगवान घोषित कर देते थे, जैसे प्रहलाद महाराज के पिताजी क्या नाम है हिरण्यकश्यप, उन्होंने भी अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। ये तो कलयुग है, जब सतयुग में लोग भगवान घोषित कर देते थे है ना, ये तो कलयुग है। या तो हर व्यक्ति अपने आप को समझता है किरदार समझता है, तो ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए, सावधान होना चाहिए। प्रभुपादी सावधान करते हैं, हमें अश्विनी गुरु के पास में जो अपने आप को भगवान नहीं करता है, वो क्या कहता है कि कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण ये भगवान है, मैं तुमका क्या हूं दास। ऐसा गुरु सच्चा गुरु होता है। आजकल जो फर्जी गुरु है वो कथा तो कृष्ण की सुनाएंगे, राम सुनाएंगे, लीला हमेशा भगवान सुनाएंगे, क्योंकि उनकी तो कोई लीला है नहीं। जब वो अपनी लीला शुरू कर देते हैं तो बेचारे जेल चले जाते हैं। लीला शुरू कर देते जेल की हवा खाने, तो हमें इस सतर्क अपने आप खुली रहनी चाहिए और कान भी खुला होना चाहिए, हमें किसकी को अपनाना है और किसको नहीं अपनाना। इसलिए हम कृष्ण को अगर अपनाएंगे तो प्रसन्न रहेंगे। और इस श्लोक का सार यही है कि हमें सब कुछ भगवान को ही अर्पित करना चाहिए, हमें उनको ही पकड़ना चाहिए, कृष्ण को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि सारी जड़ चेतन जितने भी टिके हुए हैं इस सारी वस्तुएं किससे उत्पन्न होती हैं, कृष्ण से ही उत्पन्न होती हैं, इसलिए हमें कृष्ण की ही भक्ति करनी है। इस श्लोक का यही निष्कर्ष नारद समझाते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, हमें कृष्ण को ही अपनाना है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सबके स्रोत कौन है, कृष्ण। यदि आप परम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप कुछ मत करिए, श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लीजिए तो आप अपने आप क्या हो जाएंगे, प्रसन्न होंगे। और प्रभु को प्रसन्न करने के प्रभु ने खुद ही बताया हुआ है, गीता में भगवान ने बता दिया है। अब हम न उसको पढ़े न सुने न समझे न अपनाए, ये हमारी कमी है, लेकिन भगवान को सब बता दिए। भगवान बड़े चतुर हैं, भगवान से ज्यादा कोई चतुर प्रभुपाद होते हैं, द माइंड होज इंटेलिजेंट ही डिड नथिंग। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो तो काम नहीं करता, वो तो करवाने मास्टर होता है। तो कृष्ण बड़े चतुर हैं, उनसे बड़ा कोई चवान नहीं है, वो तो क्या करते हैं राधा रानी के साथ बैठ करके बांसुरी बजाते हैं, बस 33 करोड़ देवी देवता बना दिए हैं, अपना पुरुषावतार विष्णु ही बना दिए, असंख्य से किताब उनको पकड़ा दिए, सबकी ड्यूटी लगा दिए और फिर बांसुरी हो जा रहे हैं। और अकेले नहीं श्री राधा है, हजार हजार करोड़ करोड़ लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी है। तो कृष्णा इज द सुप्रीम इंजॉयर, क्यों, तो सब ज्यादा चतुर हैं और बुद्धिमान। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है काम करवाने में मास्टर होता है। सूर्य का देवता, चंद्र का देवता, इंद्र का देवता, यमराज का देवता, सबका सबके सब अपना डिपार्ट बांट दिया, अपने पास एक ही डिपार्टमेंट है, आनंद रहता। देखिए सारा रिमोट भगवान के हाथ में है, कृष्ण के हाथ में, अथरा अथरा पावर क्या कर गए, सबको रिलीज कर गए, लोग उसी मत। तो दिस इज द इंटेलिजेंस। तो जो सबसे बड़े बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा चतुर है, सबसे ज्यादा धनवान है, सबसे ज्यादा सुंदर है, कृष्ण सारे गुण जिसके अंदर छह ऐश्वर्य साथ पा जाते हैं, अगर आपका संबंध उनके साथ जुड़ गया फिर आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। यही इस श्लोक का क्या है सार। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हाँ बोले क्या उसको।
बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपने बहुत सुंदर तरीके से इसको समझाया। मेरा प्रश्न ये था बोली, जब आप डब्ल्यू ब्लॉक ग्रेटर क्लास में जो किसी में निकले गए तो उसने आपको सबसे पहले बाहर बिठाया और आपने कहा, मैंने उसको दो तीन बातें ऐसे कही तो उसने कहा स्वामी जी अंदर चलते हैं। तो मैं जाना वो दो तीन बातें आपने क्या कही?
अच्छा अच्छा। तो सब माने उससे पहले तो बड़े प्रेम से हरे कृष्णा बोला, हमने उससे बोला उनका शेर जी आप बड़े भाग्यशाली हैं। कोई व्यक्ति किसी से सुने कि राव भाग्यशाली बड़ा अच्छा है उसको अच्छा लगता है, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति जो है ना सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, राइट। तब वी हैव टू प्रेज इट। हमें प्रसन्न करना चाहिए, किसी से हम कुछ निकालना होता तो हम प्रेज नहीं करते है नहीं, आप जस्ट प्रेज इट। हमारे कम्युनिकेशन में बताया गया है कि वी हैव टू प्रेज द डिवोटीज, वी हैव टू प्रेज द पीपल, है ना। जैसे रावण जैसे दुष्ट, कंस जैसे दुष्ट भी क्या पसंद करते थे? प्रेजिंग। तो जिसे हम मिलने जा रहे हैं, और रावण का कृष्ण ज्यादा दुष्ट तो नहीं है बेचारा, हेलो, लेकिन वो भी चाहता है कोई मुझे कोई प्रेज करे, हेलो। बस हमने दो तीन शब्द उनको ऐसे बोले बड़ा प्रश्न है, जैसे ठीक उसी प्रकार से जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, हमारे भक्तों से अक्सर होता है तो जो पुलिस वाले होते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले बेचारे दिन भर से खड़े रहते झलाए रहते हैं, हमारा भक्त जानते क्या करता है, उसको एक प्रसाद दे देता है तो बड़े खुश हो जाते हैं। जानते क्यों? वो इसलिए खुश रहते हैं कि कम से कम कोई एक तो मिला जो प्रसाद तो खिला रहा है, पर कुछ पूछता नहीं है नहीं। तब भी हम प्रेज द पीपल, हमने उसका दो तीन शब्द यही बोले, शेर जी आप बड़े भाग्यशाली। और उसके दिमाग में उतर सरा कि वो जानता है वो कितना दुर्भाग्यशाली है कि उसके साथ कितनी घटना घटी है। आप देखिए तकलीफ, यही तकलीफ है। हमने जब कहा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं और वो जानता है कितना दुर्भाग्यशाली है कि उसके साथ में घटना घटी है ना, तो इसी से बात से बात प्रभावित हो गए कि अब हम अपनी दिल की बात इनसे क्या करेंगे, कहेंगे तो शायद कोई रास्ता निकल जाएगा निकलने के लिए। मैंने यही बात अवसर गई तो बड़ा प्रभावित हो गया, क्योंकि हर इंसान क्या है दुखी है परेशान है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे जो प्रचारक है जब भी जाए किसी के मिलने के जाए तो भगवान के दो फूल और प्रसाद जरूर लेके जाए। आप प्रसाद जरूर अपने साथ रखें और उसको क्या करें, सबसे पहले हरे कृष्णा बोले और उसको प्रसाद दीजिए। प्रभुपाद जी प्रसाद देते थे और खाने के लिए बोलते थे तो खिलाओ, क्योंकि जिसकी खाए उसकी गाय, आदमी तब आपके अनुसार बोलेगा जब आपको खाएगा। तो जब टेक्निक तो आप भगवान के साथ खिलाना चाहिए, आप पूरा डिब्बा पकड़ा देंगे तो क्या टेबल पर रख देगा फिर असर नहीं पड़ेगा। आप डिब्बे में से निकालो और उसको कहो कि आप खाइए, जब प्रसाद खाएगा तो प्रसाद अंदर से अपना असर दिखाएगा। दिस इज द टेक्निक द हाउ टू स्पीक है ना, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हर इंसान जान के हर इंसान क्या चाहता है, प्रेज। कोई हमारे लिए दो मीठे शब्द बोले, कुछ सुंदर शब्द बोले, ये हर इंसान की इच्छा होती है। तो एक टेक्निक हमें अपनाना चाहिए, मैंने यही अपना। और कोई प्रश्न? जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की ग्रंथ रास महावतम की।